نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدين الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الفضل والبراء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد حكيم الأمة حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟ بہت زبردست بات ہے. ایمان حاصل ہو جائے انسان کو, مسلمان ہے, تو اس کے بعد دوسرا جو ہمارا قدم ہے وہ اچھے اعمال کرنے پر ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی افضل سے افضل اچھے اعمال کریں جس سے اللہ راضی بھی ہو اور ہمارے آخرت کی دنیا بھی بنے. یہی کوشش ہوتی ہے ہماری, اور اس میں ہم الحمدللہ اپنے آپ کو عبادات میں اور اعمال میں مشغول رکھتے ہیں. لیکن یہ جو ایک بات ہے, بڑی عظیم بات ہے کہ آخر وہ کون سی افضل نیکی ہے پتہ چل جائے تو بڑی مزیدار بات ہے, تو بہت ہی معاملہ آسان ہو جائے. جو افضل ہوگی تو اس کا انعام بھی کتنا افضل ہوگا پھر, اور اس کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ ایمان کے بعد تو اس قدر عبادات ہیں اور الحمدللہ وظائف ہیں, زندگی کوئی انتہا نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ کیا چیز ہو سکتی ہو جو ایمان کے بعد ایسی نیکی کہ جو سب سے افضل نیکی ہو. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بعد ایک تو پر ہمارا سٹینڈرڈ ہے, خود ہر آدمی اپنی مرضی سے سمجھنے لگتا ہے کہ یہ عمل جو بہت بڑا ہے, یہ عمل بہت بڑا ہے, اس کے بڑے فضائل ہیں, نہیں یہ بہت بڑا ہے, یہ بہت بڑا. ظاہر اس کے پیچھے حدیث ہوتی ہیں, اقوال ہوتے ہیں, لیکن وہ عمل جیسا حدیث سے اور علماء کلام سے اور ایسے بڑے لوگوں سے ثابت ہو تو وہ تو واقعی بہت بڑی چیز ہوگی. تو آج بھی ہمیں غور سے سننی چاہیے یہ بات تاکہ الحمدللہ پہ کام شروع کریں. اپنا زندگی تو بہت تھوڑی ہے, تو شارٹ کٹ شروع ہو جائے اللہ کے فضل سے, بھائی پتہ لگ جائے نیکی ہے تو پیچھے لگ جائے, اس کے کرنا چاہیے نا پھر تو, پھر تو بہتی ہیں. کیونکہ آج کل تو زمانہ شارٹ کٹ کا ہے, اگر جی جی مل جائے گی یہ سب سے افضل, باقی چیزوں کو پیچھے رکھ لے آدمی اور وقت سارا آدمی اس میں لگائے اللہ کے فضل سے. تو بھائی وہ نیکی بڑی عجیب غریب نیکی ہے جس کا ذکر فرمایا تھانوی رحمۃ اللہ نے. نیکی یہ ہے ایمان کے بعد جو سب سے افضل ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ, اللہ کی مخلوق کے ساتھ ذہن والا معاملہ کرنا. اب یہ کون سی عبادت تھی بھائی, سوچنے والی بات ہے. یہ کیسا عمل ہے؟ ہم نے تو اس عمل پہ کوئی توجہ نہیں دی, ہمارے ہستی تو کوئی بات نہیں. اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا, یہ تو کچھ سمجھ نہیں آتی. اگر دیکھا جائے آج تو بھائی بڑے بڑے نیکی ہیں, نیکی سے نیکی کو تو ہم کچھ سمجھتے نہیں کہ مخلوق کے ساتھ بھی کوئی رحم کیا جا سکتا ہے, یا اس کے لیے کوئی اچھا جی بات سوچی جا سکتی ہے, یا اس کا بھی خیال کیا جا سکتا ہے. कि भाई मखलूक को आराम देना, समझे, लफ्ज है उसकी हकीकत में रहम नहीं बल्कि क्या है असल लफ्ज जो बता रहा हूँ आपको कि मखलूक को आराम देना, ये असल लफ्ज है इसके। मैं उसको रहम पर अल्लाह की मखलूक को आराम देना, ये लफ्ज असल। तो ये जो है इसके लिए कौन से मुसल्ले की जरूरत है, कौन सी मस्जिद की जरूरत है, कौन सी वजू की जरूरत है। आप देखें जितने भी हम अमाल करते हैं, निकी करते हैं, अज्जा से करते हैं, सजदा करते हैं या रुकू करते हैं या इबादत करते हैं या हज करते हैं, इसमें सारे कुछ ना कुछ हमारे अज्जा शामिल होते हैं। हाथ शामिल है, माथा शामिल है, पैसे दे रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ शामिल है। लेकिन ये इबादत जो है इसमें कोई अज्जा शामिल नहीं है, बल्कि इस इबादत का जो होना है वो अज्जा के साथ नहीं इंसान के, बल्कि किसके साथ है, दिल के साथ है। ये मामला इसके साथ कि हाथ पाँव की इबादत नहीं है, ये कि हम हाथ से सीधे से या इस किस्म से कर लेना, ये इबादत किससे होगी, दिल से होती है। मामूली नहीं है अदा करना इबादत की, सोच लें आप। ये इतनी बड़ी इबादत है कि इसको अफजल कहा गया है। और जो बंदा इस इबादत को करने की इस्तेदाद हासिल कर लेता है, फरमाते हैं कि जो इस इबादत को करने के काबिल हो जाता है कि अल्लाह की मखलूक को आराम देना, इस इबादत के काबिल हो गया इंसान का दिल या खुद वो इस काबिल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो फरमाया इस अफसर इबादत का अल्लाह पर क्या इनाम देता है, उसको अल्लाह ताला अपना दोस्त बना लेता है, दोस्त बना लेता है। और जितने भी मार्फत के मुकामात हैं, जितने बड़े बड़े लोगों ने हासिल किए, हम दरअसल देखते हैं उनकी ज़ाहरी इबादत को, उनके सजूद को देखते हैं, उनकी रातों को जागना देखते हैं, उनकी इबादत देखते हैं, कुर्बानी देखते हैं, हम समझते हैं कि शायद ये वजह है जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको मुकाम दिया है, लेकिन हकीकत में ये नहीं। उनको जो मुकाम मिल रहा है अल्लाह की मोहब्बत का, कुर्ब का है, वो उन्होंने जब दिल से ही इबादत की अल्लाह ताला की मखलूक के लिए कि उनके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह वो कैफियत पैदा हो गई, उनको ये आ गया कि अल्लाह की मखलूक को आराम देना है। ये बात मखलूक में अल्लाह की बहुत कुछ है, इंसान तो नहीं है ना। अगर इंसानों को भी ले लें तो यहाँ तशवीश होगी इस चीज़ की, यही नहीं कि एक मुसलमान मुसलमान का फ़ायदा सोचे, एक मुसलमान मुसलमान को आराम दे, बस के इस्लाम का अंदाज़ बताया गया है कि इस्लाम में ये नहीं है, बल्कि ये है कि मखलूक के बारे में है। चाहे कोई किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी हिसाब से हो, लेकिन हुक्म ये है इस्लाम के अंदर क्या, एक अच्छा मुसलमान जो होगा उसकी निशानी ये होगी, वो ये नहीं देखेगा बल्कि क्या है, समझेगा कि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का इंसान, अल्लाह इसको पैदा किया है, तो फिर वो उस पर उसका दिल इतना नरम होगा कि उसके साथ रहमी वाला मामला करेगा, उसकी फिक्र करेगा उसकी। और ये चीज़ दिल से होती है, आंख से भी नहीं होगी, जबान से भी नहीं होगी, नाक से। जिसका दिल ऐसा होता है वो एक कदम देख सकता है, अगर एक इंसान भूखा बैठा है और रो रहा है और फाके से है, उसके कदम नहीं उठेंगे उस आदमी के कि जब तक वो उस आदमी की ज़रूरत को पूरा ना कर दे, चाहे कितनी भी बात हो। आप खुद देख लें कि कितनी बड़ी बात, हमारी नमाज से बड़ी तो कोई इबादत नहीं है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इबादत दी, नमाज तो सरगना है, सबसे बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी इबादत है। यहाँ भी एक देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया इस नमाज के अंदर भी, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इज़ा सल्ला अहादकुम लिन्नास युखफ्फ, हदीस क्या, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हें तौफीक दे रहा है कि तुम किसी नमाज की लोगों को नमाज पढ़ा रहे हो, तो एक चीज़ का ख्याल रखना कि नमाज को लंबा ना करना बल्कि मुख्तसर करना, क्योंकि इसमें ज़ईफ़ भी है, बूढ़ा भी है, कोई बीमार आदमी भी होगा। तो ये आगे फरमाया कि हाँ, अगर तुमने लंबी नमाज पढ़नी है तो तन्हाई में खुद पढ़ो, चाहे कितनी लंबी करो, लेकिन जब نماز پڑھا رہے ہیں آپ لوگوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں یا کسی کا, تو اس وقت یہ خیال رکھو کہ لمبی نہ کرو نماز, حالانکہ کتنی بڑی عبادت ہے, کس قدر خیال کیا گیا ہے مخلوق کا. آپ یہ دیکھیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے, بیمار بھی ہے, بوڑھا بھی ہے, پریشان حال بھی ہے, کتنی بڑی تعلیم ہے اسلام کی. آپ یہ دیکھیں اخلاق کے بارے میں, اور جب یہ تعلیم ختم ہوگی انسان سے, یہ چیز ہمارے ختم ہوگی, ظاہر پہ رہا زور, تو پھر کیا ہوتا ہے, فساد پیدا ہو جاتا ہے زمانے کے اندر. بدنام اسلام ہوتا ہے, ہوتا فساد اسلام کے نام پر ہے, لیکن وجہ یہ ہے کہ جو اتنی بڑی ہے انسان کے اندر اللہ نے جو کیفیت رکھی ہے, جو صداقت رکھی ہے, اس سے محروم ہو چکا ہے. اور پھر مخلوق تو یہ انسان ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ جانور بھی ہیں, پرندے بھی ہیں, چیونٹیں بھی ہیں, چڑیاں بھی ہیں. تو ہمارے اسلام میں تو یہ حکم ہے کہ اس کو بھی آرام پہنچائیں, اس کو بھی تکلیف نہ پہنچے. ہمارے ایک مسلمان سے کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اب بلی کوئی چیز ہے, ہمارے نزدیک جانور ہے, لیکن ایک عورت, حالانکہ متقی عورت تھی, پرہیزگار تھی, عبادت گزار تھی, لیکن اسے ایک بلی کو بھوکا رکھا تو اللہ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا. اور ایک فحاشا نے, ایک فحاشا عورت تھی, گندی عورت تھی, ایک اس نے کتے کو پانی پلا دیا, اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. حدیث ہے, دیکھیں آج ہمارا یہ حال ہے میرے بھائیو. میجورٹی یہ ہے کہ اس قدر خود غرضی ہے. عبادت بھی ہے, نمازیں بھی ہیں, اپنے نام کا تقوی بھی ہے, ہم نے جو اپنے اسٹینڈر پہ رکھا ہے تقوی اور عبادات اور سب کچھ چلتا ہے معاملہ, لیکن مخلوق سے جو تعلق ہمارا ہے, اللہ کے مخلوق سے تعلق ہے, اور رحم نظر نہیں آتا. باہر کی بات تو اللہ, گھر کے اندر یہ معاملات ہیں ہمارے. ہم سے تمہارے بیوی بچے ہی نالا ہیں, ہمیں تو ان کو پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں. ایک بیوی اور خاوند کے ساتھ, خاوند کے بیوی ساتھ, بچوں کے ساتھ معاملات, اگر ہم گھر میں دیکھ لیں, لیکن ویسی تو بڑی عبادت نظر آئیں گی ہمیں الحمدللہ, ہر چیز دعوے بہت ہوں گے. لیکن جہاں اخلاق کی بات آئے گی تو حدیث تو یہ کہتی کہ سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے, کہ انسان جو ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ, چاہے رشتے کے ساتھ تعلق اس کا ہو یا بغیر رشتے کے ساتھ تعلق ہو, لیکن مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, تو اس کے لیے اس قدر رحم ہو اس کو لے کے, وہ ہر سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہو کہ مجھے فائدہ نہ ہو, اس آدمی کو فائدہ ہو جائے, میرا نقصان ہو لیکن اس کو فائدہ ہو جائے. جب ایسی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ولی بننے کے لیے ایک ہی چیز چاہیے, یہ جو ولایت کہتے ہیں, ولایت کی جتنی بھی درجیاں کتب غوث ابدال جتنی بھی ہیں, یہ ان چیزوں سے نہیں ہے. کہتے اس کے لیے تو ایک ہی عبادت چاہیے, جب انسان اس عبادت میں پورا اتر آتا ہے الحمدللہ, تو وہ تو پھر اللہ کا دوست بھی بن جاتا ہے, اللہ اس کو مقامات پہ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور یہ ایک منزل ہے بہت بڑی, ظاہر ہے ہم نے تو اس پہ کوشش کرنی ہے دنیا کے اندر تاکہ آخرت میں بڑے مقام ملیں, اس سے بڑا اور کہ حالات میں یہ کوشش کر رہے ہیں. تو ضرور انشاءاللہ اپنی ظاہری عبادات کو ہم زور شور لگائیں, لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اس کی روح بھی جو ہے وہ کون سی ہے, دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. کیوں ہمارے دل سخت ہیں, کیوں ہمارے یہاں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی, کیوں ہمارے اخلاق گرے ہوئے ہیں, کیوں ہمیں کسی سے ہمدردی نہیں ہوتی, اتنی بھی ہمدردی نہیں. آج تو ہماری, ہم تو بھائی اب وہ باپ بھی بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں اس کو بھیج دیں چھٹی کر دیں, یہ باپ کے دل میں نہیں ہے کہ اپنے باپ کے بارے میں سوچے, بیمار ہو گیا جان چھڑانے کے چکر میں چلے جائے کہ اس کو کچھ پوچھا جائے, بلکہ جان چھڑاؤ کس طریقے سے. اور آج تک تو بہت چیزیں بن گئیں, ہوم بن گئے, اور پتہ نہیں نرسنگ ہوم بن گئے, اور پتہ نہیں کیا کچھ بن گیا. بات بات پہ ہم کہہ دیتے ہیں لے جاؤ اس کو وہاں, بٹھا دو اس کو, پتہ ہے کوئی انسان. یہ کیا ہماری نماز ہوگی میرے بھائیو, کیا ہماری عبادت ہوگی, کیا ہمارے سجدے ہوں گے, مجھے بتائیں کیسے قبول ہوں گے اللہ دربار میں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سجدے کرنے والے تو بہت بڑے بڑے فرشتے بیٹھے, تسبیحات کرنے والے بڑے بڑے فرشتے بیٹھے, سجود کرنے والے, سجدے کرنے والے, اللہ کو یاد کرنے والے. اللہ تعالیٰ کہا یہ مقصد تو نہیں تھا تیرا پیدا کرنے کا, میں تو صرف یہی دیکھنا چاہتا تھا سبحان اللہ کہ تیرے دل میں کچھ نرمی ہے, کوئی ہمدردی ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ بھی میں آپ کو سنائی, اور یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اس پر رحم فرماتا ہے جو مخلوق پر رحم فرماتا ہے. مجھے بتائیں ہم میں سے کون ایسا ہے سوائے انبیاء کے کہ جس کو رحم کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے کیا مال ہیں, ہمارے کیا حالات ہوں گے, یہ تو اللہ کی رحم ہوگا تو ہم نکل جائیں گے, بخشے جائیں گے, ورنہ اور کیا. کسی عمل کو ہم پیش کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. بڑا بڑا سا اولیاء اللہ بھی پیدا پیش کر سکتا, کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی نہیں کر سکتا. ہماری ساری زندگی کی تقوی والی عبادت, بہت اعلیٰ درجے کی عبادت, اللہ انصاف پر آ جائے تو کہے گا ٹھیک ہے ساری زندگی کی تو عبادت رکھ دے, صرف جو ایک میں نے تجھے آنکھ دی تھی اس کا مقابلہ کر دے تو اس عبادت کے ساتھ, اس نعمت کا کوئی کر سکے گا؟ ایک رات کی نیند جو ہے مجھے بتائیں اس کی بھی بڑی بہت بڑی قیمت ہے. ورنہ جس کے پیٹ میں درد ہو, جس کو وومٹنگ لگی ہو, جس کے درد ہو, ہاتھ میں درد ہو یا کسی جسم کے حصے میں درد ہو, اس کی رات کیسے گزرتی ہے مجھے آپ بتائیں؟ تو اس کے مقابلے آپ دیکھیں ہم کتنے آرام سے سوتے ہیں, بڑے آرام سے اٹھ جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں, ہم بھی سوئے بھی تھے اٹھے تھے. اس سے پوچھیں اس رات کی قدر کتنی بڑی چیز نعمت تھی. تو یہ اس قدر سو چکے ہیں ہم لوگ کہ اب اتنا ہم پہ یہ ہے غلبہ اس دنیا کا کہ ہم کبھی اس بات میں سوچتے بھی نہیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں آخرت کے حساب سے. ہمارے دل صحیح نہیں ہے بھائیو, یہ بات ماننی پڑے گی. جب دل صحیح نہیں تو یہ ظاہری عبادت کی کوئی وقت نہیں ہوگی اللہ کے نزدیک. میں نے آپ کو بتایا جیسے میں نے آپ کو اتنی بڑی مثال دی, اب کتنی بڑی بات ہے کہ امام صاحب کھڑے ہیں, ہزار آدمی کھڑا ہے پیچھے نماز کے لیے, اس امام کو اس نماز پڑھانے کا کتنا ثواب مل رہا ہوگا آپ دیکھیں. اب پھر قرآن کی قرت کرے تو کتنا ثواب مل رہا ہوگا, کتنا درجہ ہوگا. ظاہر میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے, لیکن خود اگر اس نے سکھم کو ٹال دیا کہ اس نے اپنی قرآت پہ کسی وجہ سے لمبی قراتیں شروع کر دیں, اور اندر کوئی بیمار بیٹھا ہے, کوئی مریض ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی بچہ ہے, مطلب ہے کوئی ایسا, پہلے تو عورتیں بھی آتی تھیں جماعت میں, ایسا کوئی بیچارہ معذور ہے جو سب جماعت میں شوق سے آیا ہے, وہ گر پڑا بے ہوش ہو گیا, تو مجھے بتائیں اس کو اتنی بڑی نماز کا ثواب کہاں گیا, ختم ہو گیا. کتنے مطلب آپ یہ دیکھیں کتنی عجیب چیز ہے الحمدللہ, اور کتنا بڑا حسن دل ہوتا ہے اس انسان کا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو الحمدللہ اپنے بوڑھے باپ کو کندھوں میں بٹھا کے طواف کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, ماں کو ماشاءاللہ کندھوں میں بٹھا کے طواف کرتے ہیں. پھر جتنا جس درجے کے انسان رحم والا معاملہ کرے گا, یہ الحمدللہ آرام دے گا کسی اللہ کی مخلوق کو, جو جتنا درجہ ہوگا جس کا. اب مخلوق تو بڑے اچھے اچھے لوگ چھپے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی اللہ کے بہت نزدیک ہو اور ہم اس کو اس قابل ہو جائیں کہ اس کو آرام دیں. ہم دیکھیں کوئی آدمی بیٹھے ہیں, کوئی اللہ والا ہے, نیک انسان ہے, سردی میں ہے, اور میں اپنا کمبل اتار کے اس کو دے دوں. مجھے یاد ہے اپنے حضرت کی بات, بہت سخت سردی پڑتی ہے ہمارے علاقے میں, سردی بھی سخت پڑتی ہے وہاں, گرمی بہت سخت پڑتی ہے, ریگستان ہے. تو حضرت کی مسجد تھی, قریب سے 80 سال سے اوپر عمر تھی حضرت کی, تو وہ کمبل پہنتے تھے. اس کا شبہ بہت سخت سردی جاڑا کا وقت تھا, تو ایک ہمارا ساتھی بغیر میری ایجاد کے وہ وہاں پہنچ گیا حضرت کے پاس. وہ رات کو پہنچا تو ظاہر ہے وہ مسجد ہی تھی, اور مسجد بھی اندر سے لاک تھی, وہ سہن تھا صرف. پتنی رات کی کس حصے میں پہنچا تو اب وہ لیٹر ٹھٹر رہا تھا بیچارہ. تو وہاں تو دیہات ہے, لوگ ایسے ہوتے ہیں, کسی نے چادر اوڑھی ہے, کسی نے کچھ اوڑھی ہے. تو حضرت اپنے گھر میں تھے, تھوڑی دور کے فاصلے پر مسجد تھی. تو اللہ نے پتہ نہیں ان کو کش دیا کیا دیا, حضرت باہر نکلے, ان کے پاس ایک ہی کمبل تھا. سبحان اللہ, یہ میں آپ بتا رہا ہوں گی اللہ کی بھلی کو, ایسے ان عبادت سے نہیں بنتے سے بنتے. انہوں نے اپنے وہ کمبل اتارا اور اس کے اوپر ڈال دیا. وہ اتنا تھکا ہوا تھا لمبے سفر سے, اس کو ہوشی جب کمبل اڑا تو اور ماشاء اللہ اس کی تو نیند اچھی ہوشی ہو گئی. اور حضرت جو ہے سردی کے اندر مسجد بھی نہیں کھلی, ساری رات بیٹھے رہے اس میں, اس کو سنایا. صبح ہوئی جب اذان کھلی مسجد, تو حضرت اندر گئے تو وہاں کھلی اس کی, تو اس نے دیکھا کمبل کس کا ہے. ویسے اس کمبل میں ماشاء اللہ کیا روحانیت ہوگی صبح, وہ تو ویسے جنت میں سیریں کر رہا ہوگا. تو وہ اب لوگوں کو تو ضرورت نہیں تھی بھائی, وہ کمبل سے لیتے, وہ لے کے حضرت نے کھول دیا تھا. تو اٹھا اس نے دیکھا تو पता नहीं कहाँ से कंबल लाया बेचारे ने, उसने तो कंबल वहीं रख दिया, तो किसी साथी ने जाके फिर हजरत को वापस दिया। तो सारी रात जो जीरो पता नहीं 10 डिग्री पे -10 डिग्री पे सर्दी में बैठा रहा हो, बुढ़ा 80 साल का इंसान हो, सिर्फ लेके मैं मखलूक को जो रहम दूँ, तो ये कैसा दिल होगा मुझे बताया, कैसा दिल होगा। हम तो ये भी नहीं होता गाड़ी में जा रहे हैं, कोई बारिश से जा रहे हैं तो हम उसको आप भी लिफ्ट ले ले हमारे से गाड़ी में बैठ जा, कहा पास से तेजी से निकल, कोई जानने वाला नहीं है ये हमारा सुभान, क्या जी इससे तो हमारी नाराजगी है, नहीं ये तो और मजहब का आदमी है, और मजहब के आदमी है, ये तो इस्लाम में है ही नहीं मेरे भाई, इस्लाम में कहाँ ये सब लड़ाई है, ये जो हो रहे हैं मामला इस्लाम का ताल्लुक है इससे कोई। अभी तुम हर रोज यानी एक ये हदीस आप देखना कि इससे जज कर लें आप इस्लाम क्या तालीम दे रहा, खुली तालीम दी है सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस में बता रहा हूँ आपको, इसे मैं अवजन कर लेंगे, ये हमारे इस्लाम का स्टैंडर्ड है जो हो रहा है आजकल। कितना सहला और नेक दिल होता है एक मोमिन का पता है कि ईमान के बाद जो मोमिन होगा ईमान के बाद सबसे पहले उसका चीज जो होगी इतना खूबसूरत दिल उसका होगा कि कोई भी मखलूक अल्लाह की उससे वो प्यार करेगा, उससे प्यार करेगा, हमदर्दी होगी उसको। तो जब ऐसा दिल बन जाए तो मुझे बताए किसके घर में लड़ाई हो सकती है, कौन एक दूसरे पे ज्यादतियां कर सकता है, कौन मार धाड़ कर सकता है, कौन अपच मार सकता है, वजह ये हुई कि हमने अभी इस चीज को छोड़ दी। तो ये इबादत कहां से होती है, दिल से होती है, ये जो इबादत है अखलाक की इबादत जो कहीं से नहीं होगी, आप जाहरी इबादत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और आखिरत में जो याद रखें जितनी हम इबादतों पर जोर रखते हैं जाहरी इबादत, इनका भी तराजू कौन सा होगा, यही दिल होगा। कल्बे सलीम इकरान कहता है कामयाब वही शख्स होगा जो कि सच्चा और अच्छा दिल लेकर आएगा अल्लाह के, जिसका दुनिया के अंदर दिल इतना रहम वाला होगा, इतना बेहतरीन दिल होगा कि दूसरों को तकलीफ का ख्याल करता हो और पसीज जाता हो दिल अल्हम्दुलिल्लाह, तसव्वुर ज़हन में उसको ना आता हो कि किसी मक़ूल के लिए काम करना है। तो आम आदमी की बात है तो मुझे बताया माँ बाप के तो वैसे ही बहुत मुकाम अल्लाह ने दर्जे दिए इंसान को, कितना खुशकिस्मत इंसान होगा वो औलाद सुभान अल्लाह जो बुढ़ापा पाए अपने बाप का अपनी माँ का, और उसके माँ बाप उसके पैसे की वजह से नहीं हो, एक वक्त एज में ऐसा आ जाता है, मैं बताऊँ आप इंसान का एक एज का वक्त ऐसा आ जाता है उसको पैसे की जरूरत नहीं रहती, बल्कि उसको क्या दो बोल मोहब्बत की जरूरत होती है, मोहब्बत की जरूरत होती है। आप उस आदमी के पास जाके ना उससे सब मोहब्बत के दो बोल देंगे ना खुदा की कसम वो इस कदर राहत आ जाएगी उसको सुभान अल्लाह को मेरी हमदर्दी करने वाला भी होगा। अगर ये नज़ारा आपने देखना है इस मुल्क के अस्पतालों में जाके देख लें कि जिनको पता नहीं हमारा बाप कहाँ है, उनका बेटा कौन है, कौन कोई नहीं उनका बेचारा, सहारा ही कोई नहीं उनका बेचारा, और अस्पताल में बूढ़े लोग पड़े हैं लेटे हैं नर्सों की गाली खा रहे हैं टूटे, मैंने अपनी आंखों से देखा। एक मरीज औरत थी वो जा नहीं रही थी, मैं भी उसी वार्ड में था, अपनी आंखों से तमाशा देखता था, तो नर्स रोज उसको तंग करती थी सारे आके उसको निकालने के चक्कर में थी, वो बेचारी बूढ़ी थी, मैंने उससे पूछा वजह तेरी क्या है, हम तो यहाँ एक मिनट में रहना नहीं चाहते, तू क्यों यहाँ रुकी हुई है, कहती मैं अब तुम्हें क्या बताऊँ, यहीं की औरत थी बेचारी, कहते मैं क्या बताऊँ, मेरे तो घर में है ही कुछ नहीं हो, मैं घर जाके करूँगी क्या, तो बेहतर नहीं कि मैं बैठी मुझे रोटी मिल जाती हूँ मैं आराम से हूँ, मुझे तो घर में पूछने वाला नहीं, मेरे बेटा था मुझे पता नहीं कहाँ है, मेरी बेटी थी पता नहीं कहाँ चली गई, अब मैं घर जा क्या करूँ, यहीं मर जाऊँ तो अच्छा है। कितना फर्क है हमारे माशरे में होता है, कोई कोई माँ कोई बेटी कोई बाप, चाचा भी बाप होता है, ससुर भी बाप होता है, याद रखें बाप ये नहीं कि रिलेशन जो अल्लाह ने दिए बड़े मुकद्दस रिलेशन दिए हैं, चाचे को बाप ही क्या कुरान में ये लफ्ज है बाप के लिए है चाचे का, मामूली चीज नहीं रिस्पेक्ट, ससुर कोई छोटी चीज नहीं होती, ये नहीं कि बाप ही बाप नहीं, रिलेशन ऐसे दिए अल्लाह पाक ने कि जो कोई सोच सकता है कि यानी इतना गरीबी रिश्ते पर कि बाप मर रहा हो उसका बुरा हालत में एक बेटी हो या बेटा हो वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहे हैं उनको फिक्र ही ना हो, तो जब ऐसा दिल हो जाए तो मुझे उसकी नमाज कौन सी होगी यार, और उसके जब ये यानी जो रूहान जो जिस्मानी नस्बत रखनी है जो खून के रिश्ते हैं उसके साथ ही ताल्लुक है तो बाहर के लोगों तो चीर फाड़ में कर देगा, ये वही लोग हैं जो मारते हैं लोगों को, ये वही लोग हैं जो मारते हैं लोगों को, अजीब अजीब तरीके से आप देखें कि जो आज जिस तरह लोगों को मारते आदमी हैं, तसव्वुर नहीं कर सकता اللہ معاف فرمایا, دیکھ نہیں سکتا آدمی کہ کس بے رحمی سے مارا جاتا ہے, گردن اڑا دیتے ہیں, جسم سے دستی نکال دیتے ہیں. تو جب دل بگڑتا ہے تو اس کا یہ حال ہو جاتا ہے, چانوں سے بدتر ہو جاتا ہے. میرے بھائیو, ساری بات کہنے کے مطلب میرا جو ہے یہ ہے, حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ہم اس گھمنڈ میں نہ رہیں, اپنی عبادتوں کے گھمنڈ میں نہ رہیں, اپنے سجدوں کی گھمنڈ میں نہ رہیں, اپنے وظائف اور ذکروں کے گھمنڈ میں ہم نہ رہیں. خدا کے واسطے ضرور بیٹھ کے اپنے دل کی طرف نگاہ کر لیا کریں, اور یقین کریں آپ, اگر دل کو دیکھنے کے لیے ایک بات ہے آپ, کہ جب کسی کے خدمت کر کے, یہ بھی یاد ہے, جب کسی کی خدمت کر کے دل کے اندر خوشی ہونے لگے تو سبحان اللہ, مبارک بات دیں اپنے آپ, بھائی ماشاء اللہ میں آپ کو دل بنتا جا رہا ہے. کسی کی خدمت کر کے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں کسی کی تکلیف کو دیکھ کر, یعنی جو خونی رشتہ ہے وہ اس پہ تو آتے ہی ہیں, یعنی تو خونی رشتہ آنسو کیا ڈانٹتا ہے آدمی, خونی رشتے میں بتایا ڈانٹتا ہے اس کو, جگڑتا ہے, تو لے جا, تو کر, میں کیوں کروں, فلاں کر, یہ کر. یاد رکھو, اس وقت اگر کوئی غیر بھی اٹھ کے کہہ دے گا, الحمدللہ, یاد رکھے, غیر بھی کہہ دے گا چلو تم ہٹو اس کو میں سنبھالتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اس پر ہو جائے گا, بہت بڑا فضل, بہت بڑی سعادت ہو جائے گی. یہاں انسان فیل ہو جاتا ہے زندگی کے اندر. چند روز کی زندگی ہے, ان میں کچھ نہیں ملنا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کچھ نہیں ملنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک, یاد رکھے, ہمیں نہیں پتہ کیا معیار ہے بخشش کا, یہ بھی یاد رکھ لیں. ہاں, میں نے پہلے ایک فکر عرض کیا تھا آپ کی خدمت کہ ہمارا اپنا اپنا سٹینڈرڈ ہے, ہمارا اپنا اپنا ہم نے سٹینڈرڈ بنا لیا ہے کہ یہ افضل کام ہے, یہ افضل بات. جب یہ میں نے آپ کے سامنے مقبول اور بہت بڑے آدمی کا پڑھا ہے, استانوی رحمۃ اللہ کا, چھوٹے آدمی کا نہیں پڑھا, عالم حدیث ہی ہو آپ نے فرمایا اپنی کتاب کے اندر, معمولی چیز نہیں ہے, مطلب دین کا دین یہ ہے, کہتے ہیں دین تو یہ ہے. وہ تو حکیم الامت تھے نا, ان کو مشہور حکیم الامت تھے, وہ تو آدمی کو اس جڑ کو پکڑتے تھے کہ جو اصل چیز ہے وہ اس کو بتایا جائے. تو آج الحمدللہ ہم بہت کچھ عبادت کرتے ہیں, ذرا اپنے دل کی طرف جہاں کی اس نرمی کو بھی دیکھیں کہ ہم نے کہ اللہ کی مخلوق کس کو آرام دیا, مخلوق میں گھر ہی دیکھ رہے ہیں تو گھر سے شروع کریں, گھر سے شروع کریں. تو یہ جو عرض کی بات, اس لیے کہ ہمارا تو اپنا اپنا معیار ہے کہ یہ افضل ہے فلاں افضل ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا کل ہماری کس چیز پہ ہماری بخشش ہو جائے گی. میں بتاؤں, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, امام شافعی رحمۃ اللہ کا کیا مقام ہے بھائی. اب ان کی تعریف شروع کروں تو شاید بات کس طرف اور نکل جائے, علماء کرام موجود ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ کتنے بڑے امام تھے اور ان کی کیا تقویٰ تھا, اور الحمد للہ کتنے بڑے صوفی تھے, وہ کتنے بڑے اللہ والے تھے, ہر فیلڈ کے اندر لاجواب تھے, اور 40 سال کی عمر میں انتقال کیا, اور ایک یاد چھوڑ گئے. مجھے بتائیں جو یاد چھوڑ گئے پورے زمانے کے اندر, ایک پوری گروپ چھوڑ گئے شافی جو ان کو فالو کرتا ہے یا ایسا نہیں؟ ٹھیک ہے, اچھا, اب ہم کہیں گے امام شافی کی بخشش کس پہ ہوگی, ادھر ہمارا دھیان کہاں جائے گا؟ یار قرآن پڑھاتے تھے, انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں, انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں, جائے گا نہیں جائے گا؟ وہ تو رات کے بڑے جاننے کے جاگنے والے تھے فلاں, اور واقعی اس میں سے ایک شک تو نہیں, یہ ساری لائنیں جو ہیں بڑی عظیم ہیں, سب بہت اونچے مقام بلند پڑھنے والی چیزیں, حدیث پڑھانا, حدیث پہ لکھنا, کتابیں لکھنا, لوگوں کو ترغیب دینا, پھر اتنی بڑا ماشاء اللہ لوگوں کو چھوڑ کے جانا پیچھے جو ان کو فالو کر رہے ہیں, ایک معمولی چیز تو نہیں ہے. تو آنکھ بند کر کہیں گے جنت, وہ کیا کہتے ہیں؟ جب ان کا انتقال ہوا تو بہت, یہ تو بہت واقعی میں ایک چنا ہے اس میں سے, ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے جو شاگردوں میں سے انہوں نے خواب میں دیکھا امام شافعی, تو اس نے ویسے سوال کیا کہ حضرت یہ جنت کیسے ملی ہے آپ کو, کیسے بخشش ہے؟ اب سنو ان کیا جواب دیا, سوال تو اس نے کر دیا لیکن دل تو ہوگا, یہ تو اتنے بڑے آدمی تھے, شیخ الحدیث تھے, بڑا مقام تھا, تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جو تو سوچ رہا ہے نا اس وجہ سے نہیں ہوا, سبحان اللہ بولے, وہاں معیار کچھ اور ہے, تمہارا کچھ اور ہے, تم تو سجدے مارتے رہے, گھسٹتے رہے, پریشانیوں کو بیچے گا, باقی لوگ تمہیں پیچھے گالی دیں, سجدے اتنے بڑے ہوتے تھے, لوگوں کے پیسے کھا گئے, مال کھا گئے, گالیاں کھا گئے, نہ بچوں کو بتانا, بیوی کو پتا, وہ بھی گالیاں دے رہی ہے, ساس بھی گالی دے رہی ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی ادھر ادھر, کسی کچھ अपनी लाइन पे लगे रहते हैं, बस हम तो इससे बख्शिश हो जाएगी हमारी। क्या जो तू समझ रहा है उस पर नहीं हुई, हम तो बहुत छोड़ के गया हूँ। हजरत किस पे हुई कि तेरे जहन में भी नहीं आ सकती मेरी तमाम नेकियों में से अल्लाह पाक ने कौन सी नेकी चुनी है। तो तेरे जहन में नहीं आ सकती कि अल्लाह ताला ने तमाम नेकियों में से मेरी कौन सी नेकी को मुंतखब किया, और जिसकी वजह से कहा गया इमाम जा तुझे अल्लाह ताला ने क्या, उनका नाम क्या था, इमाम शाफी, कि जमाने तुझे इस पर बख्श दिया। कहने वो क्या चीज थी, कहने बस एक दरूद शरीफ था जो मैं रात को पढ़ता था, उस पर अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। दरूद तो मैं भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, एक एक लाख पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हजार हजार पढ़ जाते हैं, सारा दिन दरूद ही पढ़ो अल्लाह के फजल से, सब पढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने एक दरूद, वो एक गैर मारूफ दरूद था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कुल्लमा ज़िक्रन ज़ाकिरा कुल्लमा ग़फ़लन ग़ाफ़िलून। हमारे दिल इस तरफ चल रहा है कि इस दरूद की मैं कोई थोड़ी सी तशरीह कर दूँ, लेकिन लाभ बहुत बढ़ जाएगी। बताऊँ इसमें क्या नुकता निकलता है, नुकता सारा जिक्र का ही निकलता है। सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह कल बात होगी इसमें। देखें दरूद पढ़ा है ना, ये हम जिक्र कर रहे हैं, इस पर बख्शिश हुई है इस दरूद पर। इतना मोहतरफ जो कहते ये दरूद मैं पढ़ता था तो अल्लाह को ये दरूद इतना पसंद आया मेरा, अल्लाह ने कहा है इमाम देख सारी नेकी तेरे, मैं इसमें नहीं बख्श रहा, तेरे दरूद पढ़ना मुझे बहुत पसंद था, जा मैंने तुझे बख्श दिया। तो क्या हमें ये नेकी नजर नहीं आती है कि मेरा बाप बूढ़ा है मैं उसको पानी पिला दूँ, मेरा बाप पाकिस्तान में और मैं इंग्लिस्तान में हूँ, मैं मेरा बाप वहाँ है मैं यहाँ रोता फिर रहा हूँ, तो दिल नहीं करता कि मैं सब कुछ को मैं देखे ऐसे बापों को, ऐसे औलाद को मैं जानता हूँ। कहते हैं मैं यहाँ रहना ही पसंद करता, बहुत बड़ी सेक्रीफाइस देखी कि जब तक मेरा बाप जिंदा है मैं सब कुछ छोड़ के जाता हूँ और उसकी खिदमत में बैठूंगा और मैं उसकी खिदमत करूँगा। सब छोड़ दिया उसने, वो ऐसे जरूरत रखने वाला, घंटों की दिनों की तो खिदमत हम कर सकते हैं। माफ़ी चाहता हूँ अगर यहाँ तो हर किस्म के आदमी बैठे हैं, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है ऐसा, हम समाज में सब नंगे, वैसे मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अब टॉपिक ऐसा आ गया हमारा तो मैं इसमें सब बात कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता होगा इसमें किसी की कमज़ोरी हो ना हो, मेरा मेरा मिजाज नहीं है इस किस्म की बातें करने का, लोगों को ताने दूँ क्योंकि मैं सबसे गंदाज हूँ, मैं खुद मैं किसी क्या कहूँ। लेकिन पार्ट टाइम तो हम चले जाएंगे, क्या ये काफ़ी है, मुझे बताया क्या ये काफ़ी है किसी को हमदर्दी देने के लिए, क्या दिल को कभी टटोला है कि हम हमारे लिए बोझ तो नहीं बन रहा, मेरा जाना कि बोझ तो नहीं बन जाएगा, मैं जाऊँगा तुम यहाँ मेरे पीछे क्या बच्चों को, हाँ अपने बच्चों का तो तुम फिक्र कर रहे हो, जरूर कर रहे हो, उनकी ख्याल है, लेकिन याद रखना जिस कोई वजह से तुम नहीं जा रहे, कल तू भी किसी का बच्चा था, उसने तेरा बड़ा ख्याल किया था। मुझे एक आदमी का वाक़ याद आता है, सुभान अल्लाह, वालिद साहब थे बड़े, जैसे वालिद साहब करते हैं सबके, ये मेरा आपको पर्सनली किस्म की बात बता रहा हूँ जो बहुत करीबी जानने वाले का वाक़ है। बच्ची उसकी छोटी थी, बहुत प्यारी थी, वो पाकिस्तान गया हुआ, तो वालिद बूढ़े थे उस वक्त, जाहिर है वो तो जवान हो गया था, शादी हो गई कि बच्ची को ले गए बाप को, तो बाप बहुत सख्त थे उनके, वैसे उस वक्त तो पाला उन्होंने, भाई रूपदार आदमी थे, तो बच्ची थोड़ी बीमार हुई या कुछ ऐसा फिट फिट पड़ा, तो जाहिर है वो खुद बाप था उस वक्त, तो उसको बड़ा अफसोस हो रहा था कि यार मैं कहाँ लेके जाऊँ पाकिस्तान में कौन से डॉक्टर। उनके वालिद आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि परेशान हो ठीक हो जाएगी, तो उसने कहा कि मैंने अपने वालिद को झड़क दिया। अल्लाह खामोश ने, आपको क्या पता है बच्ची, आप ऐसी आपको नहीं पता इस चीज़ का, मैं बच्ची मेरी बीमार है मर जाएगी, वो एकदम सख्ता से खामोश हो गए। तो कहते हैं जिंदगी आज तक मेरा चेहरा वो जो मेरे वालिद का था ना मेरी नज़र में है कि यार मैंने इसे बात कैसे कर दी, सख्ता हुआ क्या, वही बच्ची जवान है, अब वो कुछ सुना रहे, सुभान अल्लाह बोल देता है अल्लाह के कानून कैसे है। बच्ची मेरी जवान हो गई, बड़ी हो गई, और जितनी मोहब्बत और मैं अकीदत से उसको पाला था, रिवर्स होना शुरू हो गई बच्ची, सुभान अल्लाह। और कहता एक वाक़ा ऐसे ही आ गया कि उसने खड़े होकर मुझे वैसे ही डांटा जैसे मैंने अपने बाप को डांटा था, और उसकी जो डांट थी मेरी बच्ची की, जो उसकी वक्त, तो यकीन करो कि मेरा दिल फट गया उस वक्त। वो आदमी कहता है उसकी इस हरकत से क्योंकि बच्ची से या मोहब्बतों जैसे ये वक्त सुन के आते मैं दिल फट गया यार, ये मैं क्या मेरे साथ हुआ है। लेकिन फिर उसको पता था मकाफात अमल है इस्लाम में, जिसको कभी कभी हो जाता है, जरूरी नहीं है कि साथ हो। तो ये सब क्या वजह है, कि वजह यह है कि हमने हकीकत में एक बहुत बड़ी चीज को छोड़ा हुआ है, लाहरियात बहुत पड़े हुए हैं। अगर हमें पता चले कि सब कुछ ये मामला जितने भी इबादत का एक चीज पे मुनहसर है, याद रखिए वो क्या चीज है, इंसान का दिल है। दिल, आज दिल की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है, मेहनत ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है, सोचे ही नहीं कि हम दिल की तरफ मेहनत। जितने भी अल्लाह वाले बने हैं वो सब दिल की मेहनत से बने हैं भाई, याद रखिए। ये जाहिरी इबादत करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं हमारे तबलीगी भाई चलते हैं, लोगों हजारों लोगों को नमाजें सिखा देते हैं, नमाजें पे आते हैं, जमातें आती हैं, देख रहे हैं ना अपनी ओर से आते हैं, नमाज सीख जाता है आदमी, हज पे चला जाता है, अपने नमाजी बन जाते हैं, बहुत है। लेकिन दिल की जो मेहनत है उसमें पूरी जिंदगी चाहिए इंसान, याद रखें, क्योंकि सारा दारो मदार उस पर है, सारी इबादत का दारो मदार उस पर। एक पड़ोसी आपका ऐसा है जो आपको तंग करने वाला है, होंगे यहां ऐसे लोग, रोते हैं कि यार मेरा पड़ोसी मुझे तंग कर रहा है, बड़ी मुश्किल आ गई है, मेरी खिड़की थी उस खिड़की को भी खोलता है, कभी बंद करता है, कभी ये करता है, तो उसका इतना अपसेट हो जाता है सारा मामला, इतना कि उसकी जिंदगी जो जर हो जाती है, गुजारना मुश्किल हो जाता है। किसको तो जरूरत है कि दिल को बन जाए इंसान को, अल्लाह को इसी बात को पसंद है। तो ये मैं अर्ज करूंगा आपसे कि अपने वक्त को दिल की इस्लाह पर लगाएं, और जो तरीके अल्लाह पाक ने इसकी इस्लाह की बताए हैं उसकी तरफ चलें और मेहनत करें। इंशाअल्लाह जब इंसान किसी चीज पे कदम उठाता है, मेहनत करता है, जैसे जैसे दिल बनना शुरू होगा अल्हम्दुलिल्लाह, एक रहम, एक हमदर्दी, ऐसा सुकून दिल में उतरना शुरू हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, कि फिर हमारा दिल ये भी नहीं करता कि एक चींटी जो चलती है उसको मार दे आदमी, उसमें भी एहतियात आती है कि मक्खी उड़ गया क्यों मारूं मैं इसको, वो भी ऐसा लगता है कि जैसे किसी आदमी को कत्ल कर दिया मैंने, एक मक्खी बिला वजह मार दिया। यहां तक है कि इंसान अगर किसी घास के पत्ते को तोड़ लेता है तो थोड़ी देर बैठ के सोचते हैं उस बात पर, नहीं अल्लाह वाले की बात कर रहा हूं। एक शख्स चला चलते उसने टहनी से पत्ता तोड़ा, से उसने इधर आओ तुम्हारे उस पत्ते ने क्या किया था, कहता कुछ नहीं, वैसे मत चलते ऐसे तोड़ लिया, कहते तुझे पता है ये पत्ता जाकिर था जो जिक्र कर रहा था अल्लाह का, क्योंकि लिल्लाह मा फिस समावात मा, हर चीज अल्लाह की है, सब लिल्लाह मा, हर चीज जिक्र में होती है। कहते अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ये पत्ता मेरा जिक्र कर रहा था और तूने इसको जिक्र से बंद किया, इसने तेरा क्या गुजारा था, अल्लाह ने इसको पैदा किया, अल्लाह इसको खुराक दे रहा था, ये और ये मस्त था, ना जाने अल्लाह ने इसके लिए कितनी बड़ी बड़ी खुराक मखलूक के लिए रखी होगी, और तूने चलते बिला वजह इसको तोड़ लिया, तुझे पता है कि तेरे अमाल में कितने गुना लिखे गए इस चीज के। ये है इस्लाम हमारा, हम तो ठुक गोली ये कत्ल वो कत्ल, मुसलमान तो नहीं कर सकता, ये कर सकता है, आई डोंट थिंक। तो ये दिल है इंसान को बनाना, अल्लाह पाक ने इस दिल की मेहनत के लिए जो बात सबसे पहली चीज की है, क्योंकि ये मर्ज की हदीस है, उसमें यही है कि ईमान के बाद सबसे अफजल नेकी कौन सी है, ठीक है ना। तो सबसे अफजल नेकी लिखी है, अल्लाह ने सबसे अफजल की इबादत रखी है जो इसको बनाती है, वो क्या है, बोला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह ने कहा कि सबसे बड़ा जो है अल्लाह का है, क्या है, अल्लाह का, क्योंकि जिक्र जो है इंसान को अफजल बनाता है, बुलंद बनाता है। इस वजह से नहीं कि मैं जिक्र करने वाला हो गया अल्लाह, नहीं 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 नहीं, इसलिए कि वो जिक्र जो है उसके दिल को साफ कर रहा है, दिल को मुशफ़ा कर रहा है। मेरे दोस्तों अच्छा हमने ये भी सुना है, या हम जब जिक्र शुरू करेंगे जब नेक हो जाएंगे, अंदाजा लगा, कभी ऐसे हुआ आदमी कह जी पाक साफ हो जाऊंगा तो फिर नहाने जाऊंगा, मैं सेंट शेंट लगा के बिल्कुल साफ चिट्टे कपड़े पहन के ठीक ठाक फिर नहाने जाऊंगा, नहाने तो आदमी जब ही जाता है जब गंदा होता है आदमी, गुसल तो उसी को करता है, तो इस इंतजार में हम थोड़े हम तो हैं गंदे, हम हालत में गंदे हैं, उसके लिए तो बेहतर चीज है अल्लाह ताला कहता है कि कम से कम इंसान दो दफा तो गुसल करे, दिल को गुसल दे दो दफा तो दिन के अंदर, हर कुरान के अंदर बार बार लड़का है, बार बार कहे सुबह और शाम, सुबह और शाम जिक्र के बारे में बार बार अल्लाह पाक ने यह बात कही है। यहां जिक्र का मामला है ना, दो चीजें अल्लाह पाक ने कही है जिक्र के अंदर। एक क्या है, औकात दिए हैं सुबह का और शाम का, और उसके साथ क्या है जिक्र अल्लाह कसीरा। दो बातें कही, सुबह और शाम की पाबंदी कर, ये तो गुसल तूने करना है, देना है अपने दिल को हालात में, अगर तू चाहता है कि तू इंसान बने। ये तो लाजिम है हर इंसान पर कि सुबह और शाम डेफिनेटली उसने अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से धोना है, फजर के बाद इशराक तक, और शाम को जनाब मगरिब के बाद इशराक तक या इशा के बाद, जिस तो उसने करना है दो दफा। और फिर फरमाया जिक्र अल्लाह कसीर है, उसके बाद यह है कि दिन में चलते फिरते जितना भी चाहे तो अल्लाह का जिक्र कर सकता करता रहे। जो इंसान अल्लाह के जिक्र को इस तरह पकड़ लेता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका दिल फिर साफ होना शुरू हो जाता है, होना शुरू। और जिसने जिंदगी भर ये ख्याल ना किया हो, बुढ़े हो गए, पता ही नहीं अल्लाह का जिक्र क्या होता है, सुबह कब जिक्र होता है, शाम को जिक्र होता क्या है, कौन सा जिक्र करें, ये बात इतना पता है। सुबह अल्लाह हम तो पढ़े जिक्र हो गए, सुना अभी हम तो पढ़ो ही जिक्र हो गया। जिक्र की कई अकसाम है मेरे भाई, ये तस्बीहात हैं, जिक्र तो हर चीज है, कुरान भी जिक्र है, कुरान की तलावत भी जिक्र है, तबलीग करना भी जिक्र है, मैं जो बात कर रहा हूं ये भी जिक्र है, बीवी को रोटी देना ये भी जिक्र है, बच्चों के लिए कमाई करना ये भी जिक्र है, ये सब जिक्र है। लेकिन बिलखसूस वाला जिक्र अल्लाह पर जिसके बारे में कहा गया है, ये वो जिक्र है जिससे दिल साफ होता है, दिल साफ। तो ये तो कोई आपको अल्लाह वाले जो डॉक्टर बता सकता है कि हजरत जाए हमें बताएं, हमने अपने दिल को साफ करना है, तस्बीहात तो हमें पता है, सुबह अल्लाह पता है, सुबह हमने पता है, अल्लाह हेल्प अस, ये तो सब है जिक्र, ये तस्बीहात पता है, लेकिन हमें वो जिक्र बताएं जो बिलखसूस हमारे दिल को साफ करे और जिसकी हम पाबंदी के साथ उसका अख्तियार करें। तो ये तो फिर इसके लिए तो अल्लाह वाले हैं जिसके पास इंसान को जाना पड़ता है, हमने जाना नहीं, हमने कदम नहीं उठाना। और जो म्यार हमने अपना रखा है नेक बनने का, बस वो नेक हैं, लोग हमें कहते रहे नेक, हम भी बड़े खुश हैं, और जब वहां उस दरबार में जाएंगे तब पता लग जाएगा दिल हमारा कैसा है। जिसको आपने साफ ही नहीं किया कभी, उस पर साबुन इस्तेमाल नहीं किया, उस पर चले ही आपने, तो मुझे पता है साफ कैसे हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा साफ। हो सकता है कभी ऐसे हुआ कि आप ये कपड़ा लें और मशीन के आगे रख दें और सो उठेंगे धुल गया, धुला क्यों नहीं, मशीन के आगे था यार, तो सही रात रखा है इसके मशीन के ऊपर, कपड़ा धुला नहीं हमारा। या कपड़ों को लेकर स्त्री के साथ रखने सो जाए, यार स्त्री के साथ रखा था मैंने, ये स्त्री क्यों नहीं हुई इसकी। तो ये तो बहुत जरूरी है, इंशाल्लाह कोशिश करें कि ऐसा माहौल बनाए, ऐसी सोसाइटी बनाए कि सुबह और शाम को जिक्र पाबंदी के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह इज्तमाई का जिक्र हो रहा था, वो तो फबे हा नूर नूर है, उसमें शामिल हो जाए। जब आदमी किसी के जिक्र की बात से बता रहा हूँ तो सुनते ये अपनी दावत दे रहा है, ये शेख मुरीद बनाने के चक्कर में है। आज के बड़ा चक्कर है, ये तो मुरीद बनाने के चक्कर में ही है, बस ये कि बस आओ मुझसे मेरे मुरीद बन जाओ। उसी कर इतनी बड़ी बातें मैंने जो की हैं, अकल इंसान शूर हो तो आदमी ध्यान में सोच सकता है, ये क्या मुरीद का कैसे काम, कौन सा चक्कर है मुरीद का। कुल्ली बात है कि एक मजमा लगाए जिक्र हो रहा है, चलो बैठे अल्लाह के जिक्र में शामिल हो जाए, खुद इसमें क्या है। दो चीजें हैं, एक तो दिल की सफाई, दूसरी अल्लाह का इनाम। अल्लाह ताला कहता है मुझे इतना पसंद है तेरा ये अमल, क्यों जिक्र पे इतना नाम क्यों दिया। अल्लाह कहता है ये अमल मुझे इसलिए पसंद है कि ये जो अमल तू हकीकत में कर रहा है ये मेरे लिए नहीं कर रहा। सुभान अल्लाह, एक अजीब नुक्ता आ रहा है मौलाना, सुन एक जुमला दे रहा हूं कि ये जो अमल तू मेरा कर रहा है, इसमें इतना जो मैंने तुझे इनाम दिया है, कितना बड़ा इनाम कि जैसे ही कोई जमात अल्लाह के जिक्र से फारिग होती है तो तमाम फरिश्तों को आसमान पे जमा करता हूं और ऐलान करता हूं, ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, ये जमात जो अभी जिक्र करके गई है मैंने सबको बख्श दिया। तो जो अल्लाह कहेगा उसको मिट सकती है वो बात, वो बात मिट सकती है जिसकी बख्शिश हो गई हो जिंदगी के अंदर कि अल्लाह को जहन्नुम में भेजेगा। इतना बड़ा इनाम जो दिया वो किस लिए दिया, अल्लाह कहता है कि इसलिए नहीं दिया कि तू मुझे याद कर रहा है, नहीं, इस इबादत का ताल्लुक मेरे मखलूक से है, तू अपने दिल को साफ कर रहा है और इससे तेरी मेरी मखलूक तुझसे फायदा उठाएगी, इसलिए मैंने इस पर नाम दिया है। यह है जिक्र को इतना बड़ा अल्लाह ने नाम, इसकी नस्बत किससे मिलती है, अल्लाह की मखलूक से मिलती है। अल्लाह की सजदा सबसे बड़ी इबादत नमाज है, इतनी बड़ी इबादत है, आप सजदे में जाओ तो अल्लाह कहता है मेराज नसीब हो जाती है इंसान, उससे बड़ी क्या बात है। इसमें इतना सवाब दे रहा है अल्लाह ताला के एक मजलिस में, और फिर जब फरिश्ते सवाल करते हैं अल्लाह ताला, उसमें तो एक ऐसा आदमी था गंदा मंदा था, वो तो जिक्र करने नहीं आया था, वो तो वैसे ही आ गया देखते हुए, कहते हैं भाई अल्लाह ताला क्या सुभान अल्लाह, कहते हैं कि ये तो इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी मजलिस है कि मैं ये नहीं देखता कि कौन आया कौन गया किस नियत से आया, मैं तो ये देखता हूं कि उस मजलिस में शामिल था, मैंने उसको भी बख्श दिया। अल्लाह ताला की ये करम हो जाए कि रोजाना सुबह शाम जिस मजलिस में चल रही हूं मैं कहूंगा कि उस खत्ते पे अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़े ईमान और रहमत की बारिश उस खत्ते पे हो रही है जहां इतनी बोताहत हो जाए इस जिक्र की कि सुबह और शाम हर वक्त अल्लाह के जिक्र की मजलिसें कायम हों मस्जिदों के अंदर। बोले सुभान अल्लाह, इतना बड़ा इनाम है उस खत्ते पर उस जगह पर, मैं कहता हूं कि इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता। इस कहते हैं अल्लाह जिक्र रखा अल्लाह कि इतनी बोताहत कर दी अल्लाह, जैसे कहते थे कि किसी बाग के अंदर इतने फल लगा दे अल्लाह ताला, इतने मेवे लगा दे, तो आदमी कहेगा यार ये सरजमीन, ये जमीन तो सर सब्ज है, गए कहीं आम था कहीं कुर्बानी थी कहीं पीच था कहीं ये फल था, खा खा के हम तो पागल हो गए, अनार इतना बड़ा बड़ा अनार खाया तो जूस निकाला तो इतने बड़े बड़े उसमें जूस निकले, हमें तो यार बड़ा लुत्फ आया खाने के बाद भी, ये तो बहुत बड़ी चीज थी और जनाब हमें मस्त कर दिया, कितने मस्त होंगे। तो इसी तरह ये रूहानी मजलिस हैं अल्लाह के, देखें कि यार सुबह भी जिक्र है, आज मस्जिद में जाओ जिक्र है, शाम को जाओ तो उस मस्जिद में जिक्र है, सुबह देखो शाख बाबो मजमा लगा है जिक्र का, कोई दिन ऐसा खाली गया नहीं देखा हमने यहाँ जिक्र की मस्जिद से ना हो रही। बोले सुबह, ये कौन करते हैं बातें, ये वो फिश्ते हैं जिनको अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया है कि जाओ दुनिया में मजलिस जिक्र की मस्जिद को तलाश करो। तलाश किसको किया जाता है कि जो कम हो, जो चीज कम हो उसको तलाश किया जाता है। तो अल्लाह ने कहा कि ये तो इतना कम हो जाएगा तुम्हें बहुत तलाश करना पड़ेगा, लेकिन एक खत्ता ऐसा हो जाए कि फरिश्ते कहें जी तलाश की क्या जरूरत है, वहां तो हर वक्त जिक्र होते रहते लोग काम यही है हर वक्त जिक्र करते रहते। तो ये तो बोलता मुझे ऐसे ही नजर आ रहा है अल्लाह के फजल से, सुबह हम जिक्र मस्जिद में बैठे थे अल्हम्दुलिल्लाह, अपना जुमा हो तो फिर जिक्र मस्जिद में मजला जिक्र का मजलिस लगी हुई थी, शाम हुई अभी थोड़ी दो घंटे तो फिर यहाँ के हम अल्लाह के जिक्र में शुरू हो गए, अभी रात खत्म होंगे तीन चार घंटे का फिर जिक्र में बैठ मस्जिद में बैठ जाएंगे, और फिर जोर होगी तो फिर बैठे जिक्र कर रहे होंगे, और देख शाम को तो फिर हम मस्जिद आश्रय में चले जाए, क्या लंगर लगाए अल्लाह ताला की रहमत का। वो कितने कंजूस हैं आदमी जो नहीं आते, सुभान अल्लाह इतनी बड़ी रहमत बादल है। दोस्तों अल्लाह की रहमत से फायदा उठाओ, दो चीजें मिलती हैं, जो अल्लाह की रहमत से फायदा उठाता है अल्लाह कहता है शुक्र तुम लाजीद अन्ना को, मैं उसको तरक्की देना शुरू करता हूँ, और जो ना शुक्र होता है अल्लाह ताला कहता है फशकुनी अल्लाह तकफुरून, मैं उससे नाराज हो जाता हूँ। तो दो में हमें शामिल हो जाएंगे, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि जिक्र करें, अपने दिलों को बनाएं और उस पर मेहनत करें, किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक पैदा करें, उससे जाके अल्लाह का जिक्र सीखें और उसके मुताबिक अल्लाह का जिक्र करें। बाखुदा।